मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 8 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन 3 नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन मित्रों के नाम हैं सुशीला वर्मा वाराणसी उत्तर प्रदेश से, कुमार समीर आपका गांव है सुरनी जिला भोजपुर बिहार से, रोशन कुमार आपका गांव है हुसैन बुजुर्ग जिला वैशाली बिहार से। तो सुशीला, कुमार समीर और रोशन, आप तीनों मित्रों का मैं एकेडमी के अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत हम लोग दुष्कर्म, महिलाओं के साथ बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म के मामले हो रहे हैं इन पर थोड़ी सी बातें करेंगे, लेकिन मैं उस सिस्टम के तहत बात नहीं करूंगा कि इसके क्या कारण है और क्या उपाय होने चाहिए। मैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पैटर्न पर इसके बारे में आपको कुछ सलाह देना चाहूंगा, या यूं कह लीजिए कि मार्गदर्शन इस विषय पर करना चाहूंगा। लेकिन आइए पहले एक दो दूसरी खबरों को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक खबर है आज के अखबारों के जो मुख्य पृष्ठ हैं वो उस खबर से भरे हुए हैं, और वो हैं कि जो तमिलनाडु के पूर्व जो मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि जी, उनका देहावसान हो गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सब अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवारजनों को और देश के लोगों को इस दुख और अभाव को सहन करने की शक्ति दे। फ्रेंड्स, करुणानिधि जी के बारे में आज अखबारों में दिया हुआ है, आप उनकी जो जीवन यात्रा रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, उसे पढ़ सकते हैं। जहां तक एग्जामिनेशन का सवाल है तो नो डाउट कि जो तमिलनाडु के स्टूडेंट हैं अगर वो स्टेट सिविल सर्विस में अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि करुणानिधि जी का क्या योगदान रहा है, क्या उनकी नीतियां रही हैं, इन पर उन्हें तैयारी करनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर वो सिविल सर्विस की भी तैयारी कर रहे हैं तो जो इंटरव्यू होंगे, भले ही अभी प्री होने के बाद मेन्स होने हैं और इंटरव्यू नेक्स्ट ईयर हो, फिर भी उन्हें करुणानिधि जी के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। कोई ताज्जुब नहीं कि इंटरव्यू में उनसे करुणानिधि जी पर प्रश्न पूछ लिए जाएं, लेकिन याद रखिए वो बायोग्राफिकल क्वेश्चंस नहीं होंगे, वो एक तरीके से सैद्धांतिक प्रश्न होंगे, उनके विचारों को लेकर के हो सकते हैं, राजनीति में जो उनका योगदान रहा है उनको लेकर हो सकते हैं, उन्होंने जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए जो योजनाएं चलाई उनको लेकर के प्रश्न हो सकते हैं, स्टेट सिविल सर्विस में भी और यूपीएससी में भी। यहां मैं थोड़ी सी एक बात आपसे करना चाहूंगा दोस्तों, वो द्रविड़ शब्द को लेकर, द्रविड़ आंदोलन। आपने अखबारों में आज पढ़ा होगा कि करुणानिधि जी की जो एंट्री हुई थी सोशल लाइफ में, या यूं कह लीजिए पब्लिक लाइफ में, वो बेसिकली द्रविड़ आंदोलन के माध्यम से हुई थी। तो थोड़ा सा आइए हम एक द्रविड़ आंदोलन को समझ लेते हैं बहुत ही संक्षिप्त में, ताकि आपके दिमाग में ये तथ्य खुल सके, स्पष्ट हो सके कि बेसिकली ये है क्या। देखिए, जो द्रविड़ शब्द है बेसिकली, ये पुराणों में जो इसका उल्लेख मिलता है वो ये है, आप कह लीजिए कि जब विंध्याचल पर्वत का उदय हुआ, अस्तित्व में आया, तो ये जो भारत वर्ष है आप कह लीजिए दो भागों में विभाजित हो गया। विंध्याचल का जो उत्तर का भाग था वो उत्तर हो गया और जो दक्षिण का भाग था वो दक्षिण भारत हो गया। मैं पुराणों के आधार पर बता रहा हूं ना, मैं ज्योग्राफी के आधार पर नहीं बता रहा हूं। तो जो उत्तर का जो भाग था उसको पंचगौड़ कहा गया और जो दक्षिण का भाग था उसे पंचद्रविड़ कहा गया। जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो खासकर सिंधु घाटी की सभ्यता के दौरान आपको एक थ्योरी मिलेगी, कितनी सही है कितनी गलत है हम नहीं जानते हैं, कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक जाति रहती थी, राइट। सिंधु घाटी की सभ्यता का कैसे पतन हुआ जानते हैं आपकी, उसके बारे में अलग अलग थ्योरी है, लेकिन एक थ्योरी यह भी है कि जो आर्य जाति जो थी मध्य एशिया से होते हुए उस सिंधु घाटी के क्षेत्र में आई और वहां जो लोग पहले से रह रहे थे उनके साथ उनका युद्ध हुआ, क्योंकि आर्य जाति के पास घोड़े थे और लोहे के अस्त्र थे जो इनके पास नहीं थे, तो इन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद इन्हें दक्षिण भारत की ओर ढकेल दिया। तो ये जो दक्षिण भारत की ओर जो ढकेले गए ये द्रविड़ कहलाए, ये कहा जाता है। तो आर्य और द्रविड़ भारत में ये दो शब्द चलते हैं। और याद रखिए कि भाषा के लिए भी आर्य परिवार की भाषा और द्रविड़ परिवार की भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है भाषा विज्ञान के तहत। अगर आप भाषा विज्ञान के स्टूडेंट रहे लिटरेचर के तो आप जानते होंगे, जब हम कहते हैं द्रविड़ भाषाएं या द्रविड़ परिवार की भाषाएं तो उसमें साउथ की भाषा है, जैसे आप तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये द्रविड़ भाषाएं कहलाती हैं, ये द्रविड़ शब्द हो गया। दूसरा है द्रविड़ आंदोलन। जो द्रविड़ आंदोलन शब्द जब हम कहते हैं तो बेसिकली ये एक तरीके से बड़ा प्रगतिशील आंदोलन था। प्रगतिशील आंदोलन इस मायने में कि भारतीय समाज में जो कुरीतियां आ गई थी, या हिंदू समाज में आप कह दीजिए जो कुरीतियां आ गई थी, धार्मिक आडंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, ब्राह्मणवादी सोच जिसे हम कहते हैं जो मनुस्मृति पर आधारित, मनुस्मृति का ये बहुत ज्यादा विरोध भी करते हैं कि जहां जाति पाति ऊंच नीच स्त्रियों को दबाना, ये सारी तरह की जो परंपराएं थी इनके खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ। और आप देखते हैं कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस तरह के समाज सुधार आंदोलन 1850 के आसपास से शुरू हो गए थे। तो द्रविड़ आंदोलन शुरू हुआ तो एक तरह से ये प्रगतिशील आंदोलन था। और जिसके जनक थे आप कह लीजिए वो थे ई वी के रामास्वामी पेरियार। तो ये एक प्रगतिशील आंदोलन था। और फिर जब वहां एक राजनीतिक पार्टी स्थापित हुई इसी विचारधारा को लेकर के, जिसे हम डीएमके कहते हैं, द्रविड़ मुनयत कड़गम, उसकी स्थापना याद रखिए करुणानिधि जी ने नहीं की थी, उसकी स्थापना की थी अन्ना दुरई जी ने 1949 में। और जब अन्ना दुरई जी का निधन हो गया तब फिर करुणानिधि जी ने उसकी बागडोर संभाली और फिर अपने पार्टी को आगे बढ़ाया। अपने जीवन में कभी ये पराजित नहीं हुए, इतने बहुत लंबे समय तक ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे और बहुत ही सम्मानित लीडर्स में माने जाते थे। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी करुणानिधि जी के बारे में थी। फ्रेंड्स, अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि सरकार ने कहा है कि जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है उसे कम किया जाए, और बाकायदे एनसीईआरटी को इसका इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है कि सिलेबस में कटौती की जाए। ये मैं आपको एक जो एजुकेशन सिस्टम में जो सुधार की कोशिश चल रही है उसका एक कंटेंट बता रहा हूं। नो डाउट कि जो सीबीएसई का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, वो स्टूडेंट्स के हिसाब से बहुत भारी है, कुछ सब्जेक्ट्स के तो बहुत ही ज्यादा भारी है। सच पूछे तो उस ज्ञान का कोई सीधा संबंध समाज या ज्ञान से भी उस तरह से नहीं, हाँ विषय से हो सकता है लेकिन लाइफ से या डे टू डे कामों से उससे कोई उसका बहुत लेना देना नहीं। हम लोगों के समय में जो सिलेबस था और आज का जो सिलेबस है बहुत ज्यादा अंतर है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि सिलेबस में कटौती की जाएगी ताकि बच्चों के ऊपर जो किताबों का बोझ है, जो ज्ञान का बोझ है, जो रटने का बोझ है वो थोड़ा सा कम हो, वो थोड़े से रिलैक्स्ड होंगे तो दूसरे कामों के लिए उन्हें समय मिलेगा, उनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी फ्लरिश करेगी, वो आगे बढ़ेंगे, नई चीजें सोच पाएंगे। और कल परसों ही आपने देखा कि कहा गया कि अब खेल का पीरियड अनिवार्य किया जा रहा है, तो कम से कम उस खेल में उनका मन लगेगा और खेल के लिए पीरियड भी लग पाएंगे। अदरवाइज तो जो सिलेबस है वही इतना है कि आप टीचर से जाकर के कहिए कि भैया थोड़ा सा इसके लिए समय दे दीजिए, इसके लिए तो बोलते भैया हमारा सिलेबस तो पूरा हो जाए, यही इतना ज्यादा है। तो एक बहुत अच्छी खबर ये भी है जिसे आप एक कंटेंट के रूप में ले सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, अब मैं मुख्य विषय पर आता हूं और मुख्य विषय है दुष्कर्म के मामले को लेकर। फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं कि जो दो तीन मामले आपको सुनने को मिल रहे हैं मुजफ्फरपुर और देवरिया, इन सब को लेकर के, ये सच पूछे तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का कारण हो गया है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के कड़े कानून बन रहे हैं। कल ही हम लोगों ने चर्चा की कि 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने पर किस तरह से मृत्यु, मतलब 20 साल की सजा और इस तरह की, मतलब कठोर दंड की व्यवस्था की जा रही है। और खासकर जो निर्भया कांड हुआ 1912 के बाद से, तो लगातार इस दिशा में इस तरह की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि इसके बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रही है, मतलब आंकड़े बताते हैं कि लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। मतलब 2016 का जो डेटा आया है, आज के अखबारों में आपको पढ़ने को मिलेगा, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप उस डेटा को नोट कर लें, कुछ समय तक तो ये जो आंकड़ा है आपके काम आएगा। कोर्ट ने जो बात कही है, सुप्रीम कोर्ट ने, वो कहा है कि 2016 में 38,947 यानी कि लगभग 39,000 दुष्कर्म के मामले हुए, 39,000। सोच करके देखिए, आपराधिक मामले हुए हैं। यह संख्या सच पूछे तो बहुत परेशान करने वाली है, और कोर्ट को यहां तक करना कहना पड़ गया कि साहब देश में लेफ्ट राइट सेंटर सब जगह दुष्कर्म हो रहे हैं, और ये बहुत चिंताजनक बात है। और उससे भी चिंताजनक और घृणित बात यह है कि जो आश्रय स्थल हैं अनाथ बच्चियों के लिए, वहां ये चीजें सामने आ रही हैं। मुजफ्फरपुर और देवरिया की जो घटनाएं हैं वो आज कल अखबारों की सुर्खियों में बनी हुई हैं, उसे आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो मित्रों, सवाल यह है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, सिविल सर्विस इन्हीं तरह की चीजों से अपने लिए सवाल तैयार करता है। मैं उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहूंगा जो 2014 में पूछा गया था। मैंने बताया कि निर्भया कांड के, चूंकि निर्भया कांड हुआ था, इसके बाद बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, आपने देखा है, और फिर कुछ नए कानूनों के लिए, कड़े कानूनों के लिए की मांग की गई, फिर आयोग बैठाए गए, उनके रिकमेंडेशन के आधार पर कानूनों में भी बदलाव किया गया, जुवेनाइल एक्ट में एज लिमिट कम की गई, ये सारी चीजें हुई। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये कि दुष्कर्म के मामले कम नहीं हो रहे हैं। तो फिर रीजन क्या है? कोई और दूसरा कारण है क्या? लोगों में क्या भय नहीं है? क्या प्रशासन का भय नहीं है? क्या न्याय कानून का भय नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या इसके कोई समाजशास्त्रीय कारण है, या क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, क्या है, ये सोचने की बात है। 2014 में देखिए, जो आपका जो जनरल स्टडीज का फोर्थ पेपर है, फोर्थ, जिसमें आप सत्यनिष्ठा और मनोवृत्ति वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, एथिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसमें देखिए कि क्या प्रश्न पूछा गया था। 150 शब्दों का प्रश्न था ये, और पूछा गया था 150 शब्दों में, मतलब सॉरी 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना था। प्रश्न था, हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं, इस कुकृत्य के विरुद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, इस संकट से निपटने के लिए कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं फ्रेंड्स। वी आर विटनेसिंग इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट विमेन इन द कंट्री Despite existing legal provisions against it, the number of such incidences is on the rise. Suggest some innovative measures. ध्यान दीजिए, suggest some innovative measures to tackle this menace. 150 words. दोस्तों, ये प्रश्न है। मैं इसका उत्तर, आप क्या सोचेंगे, क्या अपनी तरफ से नवाचारी उपाय सुझा सकते हैं, इसके बारे में आप अपनी ओर से विचार कीजिए। लेकिन मैं एक तथ्य आपको देना चाहूंगा, आप इस पर विचार कीजिएगा। ठीक है, कानून बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मीडिया का इसमें कोई रोल? और जब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं तो आप सोशल मीडिया को लेकर के चलिए कि जहां हर तरह का कंटेंट, अश्लील कंटेंट उपलब्ध है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों को विकृत कर रहा है, लोगों को उकसा रहा है, या जो भी उसके एक निगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, कुछ सीमा तक क्या वो जिम्मेदार है, या बहुत बड़ी सीमा तक जिम्मेदार है, या क्या कारण है? आप इस पर अपने ढंग से विचार कीजिएगा। मैंने केवल आपको एक तथ्य दिया है कि जब भी आप इसके कारणों के बारे में सोचें तो उसमें एक कारण यह भी शामिल करके चलें। राइट फ्रेंड्स, तो मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने ढंग से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से 5 मित्रों के नाम हैं। रचित गुप्ता शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से, अमर मंडल कल्याणी से, तेजिंदर सिंह फजिलका पंजाब से, रजनीकांत तिवारी और कैलाश देवासी, आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।